कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना।
सारा दिन कोई न कोई कर्म नामे आते हैं। अब ब्राह्मणों को कर्म नामे कैसे आना है वो बाबा ने बताया हुआ। फिर शाम को सोने से पूर्व अपने उस कर्मना को समेट कर, जैसे कभी आपने देखा होगा सवेरे सवेरे बड़े शहरों में तो नहीं लेकिन खाली स्थानों पर सुबह सुबह पंछी कैसे जाते हैं, झुंड बना के बड़ी लाइनें बना के जा रहे होते हैं अपने घर से बाहर की तरफ। बड़े सुंदर लगते हैं वो, आपस में रेस करते हुए जाते हैं, लेकिन उनके पास घड़ी भी नहीं होती। अब ब्राह्मण लोग तो घड़ी भी बांधते हैं। शाम को जब उनका टाइम पूरा हो जाता है नेचुरली, क्योंकि तो नेचर से चलते हैं, तो आप देखेंगे वो वापस भी उसी प्रकार लाइनों में लगकर आते हैं, लेकिन वो पेड़ में जिसमें बैठते तो चीं 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 ज्यादा करते हैं, सुबह नहीं इतने करते हैं। थोड़ी देर में ठंडे हो जाते हैं, सो जाते हैं। इसी प्रकार से हमें भी बहुत आवश्यक है कि सारे दिन का कार्य का तो कोई अंत ही नहीं है, फिर शुरू हो जाएगा। कर्म योगी हम हैं, कर्म के बगैर तो कोई रह नहीं सकता, लेकिन उसके लिए फिर से अपने आप को, कई ब्राह्मण तो वैसे ही दो बार स्नान करते हैं, तो ये भी स्नान जरूरी है कि सारे दिन में जो कुछ थोड़ा बहुत माया का हल्का मासा धूल लगा वो साफ हो जाए। इसके लिए रात्रि क्लास भी इतना ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा बाबा जी के टाइम में, मम्मा के टाइम में भी रात्रि क्लास होता था, लेकिन रात्रि क्लास बड़ा रमणीक होता है। वो इस प्रकार का ऑफिशियल, इसमें बाबा की मुरली चलती है, वो नहीं होता है। हम आपस में बैठकर अपनी बातों को रिवाइज करते हैं। और मधुबन तो अच्छी जगह है, यहाँ रोज कभी कोई है, अलग अलग जैसे रिकॉर्ड भी आप बदल बदल के लगाते हैं। बात तो ज्ञान की होती है, अगर एक ही रिकॉर्ड रोज लगाने लग जाए इतना भी अच्छा हो तो क्या होगा। ऐसे एक ही हलवा रोज हलवा भी खिलाओ तो भी व्यक्ति थक जाता है। तो बदल बदल के वैरायटी से आपको क्लास मिलता रहता है, हर एक का अनुभव। बाबा कहते हैं अनुभव तो एक भी ब्राह्मण का कई शास्त्र भर जाए तो थोड़ा थोड़ा टेस्ट करने को मिलता रहता है। तो आजकल जो है कौन सा विषय चल रहा है, सबके अंदर कौन सी लहर चल रही है। हमारा इस वर्ष का लक्ष्य बाबा ने क्या दिया है, संस्कार परिवर्तन, उसके आगे क्या है, द्वारा संसार परिवर्तन। और हमको एक डेट भी मिली हुई है, वो डेट दो दिन के बाद ही आने वाली है ना। उसमें क्या था कि आपको अपना मुक्ति पाना है, 75% अपनी जड़ों को ढीला करना है, यही संस्कार परिवर्तन है। तो ये देखना है कि जितनी रस्सियां, सूक्ष्म रस्सियां, गोल्डन रस्सियां, कई प्रकार की रस्सियां ने, अदृश्य रस्सियों ने हमें पकड़ा हुआ था, उसमें से 75% रस्सियां ढीली हुई है ना। ये हमारा टेस्ट था संस्कार परिवर्तन का। कोई बात नहीं, अभी दो दिन तो बाकी हैं। बाबा कहते हैं ये ज्ञान तो एक सेकंड का है, और एक सेकंड में अगर जनक जीवन मुक्ति पा सकता है तो क्या हम दो दिन बचे हुए में 75% संस्कारों से मुक्ति नहीं पा सकते, जरूर पा सकते हैं। तो आज हम यही करने वाले हैं, अच्छी बात है। अब प्रश्न ये है कि संस्कार परिवर्तन द्वारा संसार परिवर्तन है या संसार परिवर्तन द्वारा संस्कार परिवर्तन है, सोचना हमको है, ठीक है। कि हम तो ब्रह्मा के बच्चे हैं, ठीक है, तो ब्रह्मा बाबा ने संस्कार परिवर्तन द्वारा संसार परिवर्तन किया, नहीं तो हम यहाँ कैसे बैठे होते, इतने ब्राह्मण इतने सेंटर कैसे बढ़ जाते, इतना हमारा परिवार कैसे बढ़ता, तो संसार परिवर्तन किया या वेट किया कि संसार परिवर्तन होगा, लोगों के मन आप ही बदलेंगे, प्राम वृत्ति आएगी, तब उनका संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। तो कौन सी चीज पहले है, कौन सी चीज बाद में है, घोड़ा पहले है गाड़ी बाद में है, या गाड़ी पहले है घोड़ा बाद में है, कौन सा होना चाहिए भाई? हाँ, दोनों साथ, वाह, फिर भी आगे पीछे क्या है? है तो बात ठीक, घोड़ा अलग बंधा हुआ हो, गाड़ी अलग हो, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो लेकिन दोनों इकट्ठे भी हैं, तो आगे पीछे क्या है? आगे क्या होना चाहिए? घोड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि संस्कार परिवर्तन ही घोड़ा है। अच्छा, तो ब्राह्मण गलती कैसे खाते हैं? कहते दोनों इकट्ठे ही है ना। तो हम ज्यादातर क्या करते हैं कि संसार बदले, संसार तो लंबी चौड़ी चीज है, ये बदले, दूसरा जिसके साथ उनका रहन सहन लेन देन होता है, सेवादारी साथी होते हैं, कुछ आगे कुछ पीछे, कुछ ऊपर कुछ नीचे होते तो है ना थोड़े बहुत, तो वो जो होते हैं वो बदल जाए। हम क्या करते हैं, मुझे क्रोध नहीं आता, इसने मुझे क्रोध दिलाया है ना, अच्छा इसने मुझे अशांत कर दिया, मेरा को तो दिक्कत कर दिया, सोने ही नहीं देते मुझे, उठने ही नहीं देते, जो भी काम है हम कहते हैं इसको बदलो तो हम बदल जाएंगे। तो क्या हुआ, गाड़ी पहले आई या घोड़ा पहले आया? गाड़ी पहले आ गई। अच्छा, फिर और अपने आप को पक्का करने के लिए अभी पूरा बदला कौन है, इसलिए और भी आराम से सो जाओ, अभी तो कोई बदला नहीं, क्योंकि देखना ही जिसने है कि कोई नहीं बदला, उनको नहीं देखना जो बदल गए, उनको देखना जो नहीं बदले तो क्या होगा। तो सोच रहे हैं दूसरा बदले तो मैं बदलू, ठीक है, उल्टा हो गया काम, उल्टी गंगा। अच्छा, फिर प्रश्न ये है कि जिसको बनना है उसको बदलना, ठीक है, आप चाहेंगे कि जिसका आप नाम ले रहे हैं ये बदल जाए, वो तो बदल के लक्ष्मी नारायण बन जाए, गद्दी पर बैठ जाए, और हम कहें कि इसको बदलना था वो तो बदल गया, चाहे उसको दादी जी ने बदला या उसको उसने मेहनत करके, आपका क्या हाल हुआ है? बदलना तो मुझे था ना, तो जिसको बनना है उसको बदलना है, तो हमारा काम दूसरे को बनाना है या अपने को बनाना है? तो ये सोचना चाहिए कि जिसको बनना है उसको बदलना है, तो मुझे बनना है या नहीं। जब अधिकार लेना होगा, जब पद पाना होगा, तो हम कहेंगे दूसरे को दे दो सारा, टोली भी जब बढ़ती है तो देखते रहते हैं मेरे लिए बचेगी या नहीं बचेगी, है ना, पहले पहले ले लूं, मोटा पीस ले लूं, है ना। अभी ये तो टोली है, यहाँ पर तो बड़ी बादशाही है, 21 जन्म का बाजी है, तो उसमें आप चाहेंगे कि दूसरा बदल के वो बन जाए और मैं बदलू ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। इस वास्ते अगर हमने संस्कार परिवर्तन करना है, परिवर्तन मैंने बदलना, तो हमें ये देखना है बनना किसको है, ठीक है, ये प्रश्न सीधा है, मुझे बनना है, तो जिसको बनना है उसको ही बदलना है, ठीक है। इस वास्ते कभी भी हम ये कहें दूसरा तो नहीं, मैं को वैसे मारना है, लेकिन मैं को चेंज करना है, मारना भी किस लिए, ऐसे थोड़ी जान से ही मैं चली जाए, लेकिन मैं को मारने का मतलब ये मैं को बदलना, प्राणी वाली मैं को खत्म करके नई को लड़ना। तो हमारा एक स्लोगन है, बहुत इजी स्लोगन है, वो क्या है, पतन की जड़ क्या है, उन्नति की सीढ़ी क्या है, है स्लोगन, वो क्या स्लोगन है, पर चिंतन पतन की जड़। अगर भाई हमें तो सारे विश्व का कल्याण करना है, सारी दुनिया को बदलना है, पर चिंतन नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। सारा दिन हम दूसरे की तो चिंता करते रहते हैं, हे बाबा कलयुग का विनाश हो, दुनिया आ जाए, सब जो मुझे तंग करने वाले हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे मित्र, मेरे संबंधी, हाय मेरा शरीर है, ये सारे ठीक हो जाए, मेरा पति मेरे, तो हम तो परचिंतन में ही रहते हैं। तो बाबा ने कहा, क्या कहा है, परचिंतन पतन की जड़ है या परचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न ये है, संसार परिवर्तन, अब संसार कौन सा, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन, तो मेरे संस्कार इतने बदल जाएं, जो सारी दुनिया ही बदल जाए, तो खुशी हो जाए, लेकिन मेरे संस्कार बदलते हैं, दुनिया तो बदलती ही नहीं। तो मैं कहता हूं भाई संस्कार तो कुछ तो बदले, 20% 40% संसार तो बदला ही नहीं, वो तो और ही ज्यादा खराब हो गया। तो मेरे परिवर्तन से संसार नहीं बदला, तो उत्साह रहेगा या उत्साह घटेगा? इसलिए ये जानना जरूरी है संसार से क्या मतलब है, यहां कौन सा संसार परिवर्तन। चाइना बदल जाए मेरे परिवर्तन से, जापान बदल जाए, रशिया बदल जाए, तमिलनाडु बदल जाए, क्या बदल जाए? इस वास्ते संसार परिवर्तन का अर्थ है जिसने बदलना उसी को मिलना है। तो मेरे संस्कार परिवर्तन से मेरा संसार परिवर्तन होगा, समझ गए आप? इस फिक्र में नहीं रहना कि दुनिया बदल, मैं देखता रहूं कि मेरे संस्कार तो बदले, दुनिया तो बदली नहीं। नहीं, मेरे लिए संसार बदल जाएगा। इसलिए ये शब्द आप देख लीजिए कि मैंने बदलना है, मुझे ही मिलना है। तो मेरा संसार संस्कार के साथ लिंक है। आज की समय में, इस घड़ी में भी हमारे को कैसा संसार मिला हुआ है। दूसरी बात यह है कि संस्कार परिवर्तन का अर्थ क्या है? क्या हमने बाहर से कोई संस्कार लाने हैं जो कि हमारे अंदर नहीं है? जो कोई व्यक्ति जैसे धन कमाता है तो अपनी जेब में धन नहीं होता, बाहर से लेके आता है। क्या हमने संस्कार बाहर से लाने हैं जो कि हमारे अंदर नहीं है, या जो बाहर से संस्कार आए हुए हैं उसको खाली बाहर भेजना है? जिसने हमारे असली संस्कारों को छुपा दिया है, दबा दिया है, पीछे कर दिया है, उसको हमने बाहर भेज देना है? बाहर की पराई चीज को बाहर भेज देना है? आपके घर में आपका पड़ोसी आके आपके आम के पेड़ के आम तोड़ना शुरू करे, आपको कैसा लगेगा? हैं? आपके मन में कोई खुशी के भंडार हैं, आपके मन में कोई आके आपकी खुशी को लूटना शुरू कर दे, उसकी जगह दुख भरना शुरू कर दे, या आपके अंदर फूल हैं उसमें आके कांटे चुभोना शुरू कर दे, आपको कैसा लगेगा? तो ये जब हम संस्कार परिवर्तन कहते हैं तो बहुत मुश्किल चीज समझते हैं। अरे भाई संस्कार, आयरन एज के लोहे के संस्कार, उसको पहले तांबा बनाओ, मांझ मांझ के साफ करो, फिर उसको चांदी बनाओ, बहुत टाइम लगेगा, फिर उसको गोल्ड बनाओ, बाबा तो कहता है डायमंड संस्कार बनाओ, ये तो भाई 2 दिन में तो होने वाला नहीं है, इतने साल हो गए। तो इसलिए ये विधि ठीक नहीं है। हमको खाली जो बाहर से घुस गया है हमारे घर में उसको निकालना है, बस। अंदर तो हमारा ठीक ही है। अगर सूर्य को आप देखें, सूर्य जब निकलता है चारों तरफ रोशनी कर देता है, लेकिन एक छोटी सी काली बदली अगर सूर्य के ऊपर आ जाए तो क्या होता है? सब जगह ऐसे लगता है अंधेरा छा गया, सूर्य है ही नहीं, सूर्य नाम की कोई चीज ही नहीं, क्योंकि बदली ने सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन अगर बदली को हटा दे तो क्या होगा? फिर रोशनी हो जाएगी। इसी प्रकार से हमको ये नोट करना चाहिए कि हम सब जो यहां बैठे हैं वो कौन से घराने की, कौन से युग की आत्माएं हैं, बताओ। कोई ये भी नहीं कहना पसंद करेगा हम त्रेता युग की आत्माएं, कोई कहेगा? यहां तक भी हम पसंद नहीं करते, अरे त्रेता युग इतना अच्छा, राम जी की आज तक पूजा हो रही है, जब सड़क पे जाओ तो लोग राम राम ही कहते हैं, आपको भी आप ना बोलो तो आपकी तरफ देखते हैं इसने जवाब क्यों नहीं दिया, और राम के मंदिर के लिए कितना झगड़ा कर रहे हैं। तो ऐसी युग में भी हम कहते हैं ना ही हम त्रेता वाले नहीं, तो फिर कौन से हैं भाई? अगर त्रेता भी पसंद नहीं करते तो क्या हम कलयुग के हैं, द्वापर के हैं, कहां के हैं? उससे ऊपर वाले हैं ना। तो जब हमारा है ही, हमारा कुल, हमारा डिग्री हमारी ये है सूर्यवंशी है, तो अब आप बताओ सूर्यवंशी, चंद्रवंशी तो उसके बाद में आता है, सूर्य से चंद्रमा है रोशनी लेता, अपनी तो उसकी होती नहीं, वो तो जूठा खाना है, ये अपना यूज किया हुआ युग दूसरे को दे दिया, चलो अब तुम भी इसको यूज कर लो। लेकिन जो सूर्यवंशी वाले हैं उसके अंदर कौन कौन घुसा? किसी ने ये तो सुना होगा सोने में चांदी की खाद मिला दो, ठीक है, किसी ने ये तो नहीं सुना कि चांदी में सोने की खाद मिला दो, सुना है कभी? वो तो महंगी होती है और भी ज्यादा, या तांबे में सोने की खाद मिला दो। तो खाद क्या है? खाद नीचे वाली चीज है या ऊपर वाली चीज है? दूध में पानी मिलाया जाता है या पानी में दूध मिलाया जाता है? आप सोचो, आजकल तो पानी में ही दूध मिलाते हैं, वो बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन अगर हम ये देखें कि कौन सी चीज हमारे अंदर आ गई है जो हमारे प्रॉपर्टी को जब्त कर रही है, जिससे कि प्रॉपर्टी कोई ले ले तो कोर्ट में भी चले जाते हैं, उसको भगाते हैं बाहर, दूसरे भी कहते हैं ये तो इसकी प्रॉपर्टी, तुम इसके अंदर क्यों आ गए? तो कौन सी चीज आ गई है वो बाबा ने बताया हुआ है। ये क्रोध हमारी प्रॉपर्टी है? है नहीं है ना? अच्छा, लोभ हमारी प्रॉपर्टी है? ये तो बीमारियां हैं, हैं? ज्यादा लोभ करते जाओ इसी में शरीर छूट जाता है। अच्छा, मोह हमारी प्रॉपर्टी है? नहीं। ये जितनी चीजें हैं ये सब विनाशी है। बाबा ने हमको इन सब चीजों से परे हटने के लिए क्या बताया? ये सब चीजें विनाशी है। अभी कुछ दिन पहले ही मुरली में आया था कि साइंस वाले नकली हार्ट बनाते हैं ना, और नकली हार्ट बना के लगा देते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं बच्चे, और सचमुच वो हार्ट चलना भी लग जाता है। लेकिन बाबा ने ये कहा जब शरीर छूट जाएगा तो नकली हार्ट कायम रहेगा, वो भी साथ ही जाएगा। इस वास्ते उसकी आयु कितनी हुई नकली हार्ट की? आपकी आयु की जितनी हुई जिसने लगवाया। तो जब उसकी आयु ही अल्पकालिक है और अकाल मृत्यु के बंधन में है तो उसका नकली हार्ट भी कहां तक चलेगा? इसी प्रकार से आपने लोभ किया, अच्छा धन इकट्ठा किया, दूसरे का भी ले लिया, इसका भी ले लिया, कई ब्राह्मण साबुन की टिक्कियां इकट्ठी करते रहते हैं, और भी कई चीजें इकट्ठी करते रहते हैं, कई समोसे मिले तो भी दो ले आते हैं, खरबूजे मिले तो भी दो ले आते हैं, तरबूज तो मोटा होता है पता नहीं दो लाते हैं या क्या करते हैं। लेकिन ये लोभ ही है ना, ये छोटा लोभ है, वो जरा बड़ा लोभ है। तो लोभ विनाशी चीज का करने का मतलब क्या हुआ कि पहली बात हमने भोजन को या वस्तु को ब्रह्मा भोजन समझ के, भगवान की देन समझ के, शरीर चलाने के लिए समझ के ना करके लोभ किया है। उसके लिए कुछ तेजी तूजी भी की होगी, किसी से छुपाने की कोशिश की होगी, किसी से जल्दी से ले लूं, कुछ ना कुछ अपनी स्पीड को कम ज्यादा किया होगा। जैसे किसी का ब्लड प्रेशर कम ज्यादा हो जाता है या कोई बहुत दौड़ता है सांस फूल जाता है। अच्छा, तो ये लोभ से क्या हुआ? है तो छोटी चीज लेकिन असर तो उतना ही हो गया, आपकी सांस भी तेज चलने लग गई, और भी कई संस्कार आ गए, और कल खाएंगे, और सब चीज का नुकसान करके एक छोटी चीज के लिए। इसी प्रकार से इस दुनिया की जितनी चीजें हैं उसमें आपकी नजर नहीं डूबनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें विनाशी हैं। और जो भी जितना समय आप विनाशी के पीछे लगाएंगे, लगाइए बड़े शौक से लगाइए, किसी का दिल करता है, उतना आपका विनाशी खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बाबा ने कहा एक बिंदी लगाओ 1 से 10, दूसरी बिंदी लगाओ 10 से 100, तीसरी बिंदी लगाओ 1000। हमारी तो प्रॉपर्टी इस तरह बढ़ती है बैठे बैठे, और हम बैठ के भाग दौड़ करें जैसे मजदूर पत्थर तोड़ता रहता है, इतनी मेहनत करता है तो मजदूर ही लेबर कर रहा है, क्योंकि उसका रास्ता नहीं पता कमाई का ठीक रास्ता क्या है। इसी प्रकार से ब्राह्मणों को ये सोचना चाहिए कि हम तो हैं ही डायमंड घराने की आत्माएं, बाबा के साथ हैं, सब कुछ हमें बाबा द्वारा प्राप्त है। बाबा कहते हैं सिर्फ तुमने एक बार ही बाबा कह दिया तो भी तुम मेरे लाडले बच्चे हो गए, मुझे तो प्यारे हो गए क्योंकि भगवान को जान लिया। भगवान का किसी बड़े राजा का कोई नजदीक में भी आ जाए तो वो उसका पेट भरा रहता है, और आपको तो भगवान बच्चे बना रहा है, कोई दास दासी नहीं बना रहा है। इस वास्ते आपकी तो नजर भरी हुई होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं अगर छोटी मोटी चीजों की गुंजाइश रखोगे, जैसे किसी फर्श के अंदर खड्डे होंगे तो वहां पहले पानी भरेगा फिर आगे जाएगा, ऐसे ही आपका ज्ञान ध्यान आपकी सेवा वो उसमें पहले वेस्ट होगी। इसीलिए सेवाधारियों को, क्योंकि यहां पर ज्यादा सेवाधारी हैं, सेवाधारी सबसे बड़ा सौभाग्य है। क्या जैसे आजकल की दुनिया में किसी की नौकरी लग जाए तो क्या कहते हैं? बड़ी सौभाग्य है। آج نوکری لگی ہے. پتا آپ کو کوئی لڈو بانٹتا پھرتا ہے, پوچھا آج لڈو کیوں بانٹ رہے ہو, تو بڑی خوشی سے کہتے ہیں آج نا نوکری نہیں کہتے سروس لگ گئی ہے. جیسے کرشن کو کالا نہیں کہتے سامرا کہتے ہیں نا, آج اس کی سروس لگ گئی. سیدھا کہے نوکر بن گیا تو برا لگتا ہے, لیکن ہے تو نوکری. پھر بھی کتنے خوش ہیں کیونکہ سوچتے ہیں اتنے لوگوں کی آج کل نوکری ہی نہیں ہے, یہ تو کلجو کی نوکری ہے. اور ہم لوگوں کی کون سی ہے, کون سی سروس ہے, کیا ٹائٹل ہے ہمارا, آن گاڈلی سروس اونلی. اور ہمارا تو باپ ٹیچر گرو تینوں کہتے ہیں ہم ہی اوبیڈینٹ سروینٹ ہیں. دنیا میں آپ نے کبھی سنا کہ کسی کا باپ ٹیچر گرو اتنا نرمان ہو, اتنا نرمان ہو جو کہے کہ ہم اوبیڈینٹ سروینٹ ہیں. ٹیچر کہے گا دکشنا لاؤ میرے پیر چھو, باپ کہے گا اے نلائک تم نے میرے کو نمستے نہیں کیا, اور گرو کا تو کہنا ہی کیا ہے. لیکن یہ اتنا نرمان ہے, اس کے ہم بچے ہیں, ہمیں کیا ہونا چاہیے, اکڑ دکھانی چاہیے نہیں. اس واسطے بابا کہتا ہے کہ سروس سیوا یہ سب سے بڑی ہماری بھاگیہ ہے کہ ہمیں سیوا کا موقع ملا. سیوا کا چانس ملنا بھی بہت بڑے چانسلر بننا ہے. اب وہ سیوا کرتے ہیں خوشی تو ہوتی ہے, لے اب بھگوان کے گھر میں سیوا کرتے ہیں. جتنے بڑے سیٹھ کا نوکر ہوگا اتنا اس کو زیادہ پے ملتا ہے. سب سے بڑی ایشور کے گھر میں تو انگلی بھی لگا دو گے آپ کا کتنا بھاگی بن جائے گا. مال بابا کا, آٹا بابا کا, آگ بابا کی, آپ نے صرف روٹی بنا دی بس نا. مال تو دوسرے کا سیٹھ کا ہے, اس میں بھی آپ کی اتنی کمائی ہو جائے. پانی بابا کے نل کا, آپ نے بالٹی بھر کے کسی کے کمرے میں رکھ دی. آپ ایک بالٹی پانی جب بھچال آتا ہے تو کہتے 100 روپے میں بکی, 1000 روپے میں, کہتے بہت مہنگی. اور ہماری ایک بالٹی کی کتنی کمائی ہے, جو بالٹی لے کے جاتا ہے اس کو تو پدموں کی کمائی ہو جاتی ہے 21 جنم کے لیے. تو ہم تو ایسے گاڈلی سرونٹ ہیں, ہمیں کتنی خوشی ہے کہ بابا نے سیوا کا موقع دیا. پھر وہ خوشی غائب کیوں ہو جاتی ہے کہ کوئی ہماری جیب کاٹ لیتا ہے. آپ کو بہت بڑا کوئی اسپے دے دے جیب میں بھر دے, رستے میں کوئی چور کاٹ لے, پتا بھی نہیں لگے آپ کو, تو پھر گھر جا کے تو خالی رہے گا نا, وہ کون کاٹتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہماری سیوا ہوتی ہے اس میں بابا نے ایک شبد دیا ہوا ہے, اس شبد کو یوز کرو گے تو آپ کی سیوا کا نشہ خوشی رہے گی. اور اس میں آپ کو کچھ مان شان مانگنے کی ضرورت نہیں, جو چاہتا ہے اس کے پاس کچھ خالی ہے, اگر بھرا ہوا ہوگا اس کے پاس ضرورت نہیں رہے گی. وہ کیا ہے, نمت. نمت ایک سمپل شبد ہے, نمت ہے نا. تو نمت شبد کیا ہے, یہ نمت سمجھ کے آپ کریں گے تو آپ کا چانس بڑھتا رہے گا. آپ نے سیوا دھاری دیکھے ہوں گے, کئی تو کہیں گے اچھا آج دوسرا گیا ہے تم اس کا کام لے لو, کہیں گے ہاں اس کو پتا ہے میری اور سیوا ہو جائے گی. کئی پہلے فکر میں پڑیں گے میرا ساتھی جا رہا ہے اس کا کام کوئی مجھے نہ دے دیں, غائب ہو جاؤ. تو وہ کیا کیا, اس کو معلوم ہی نہیں سیوا کا کیا لابھ ہے, وہ اپنی سیوا کا بھی اس کو خوشی نہیں ہوگی. اس واسطے یہ ضروری ہے کہ ہر دنیا میں بھی ایسا ہی ہے, گیان میں بھی ایسا ہی ہے. اگر آپ کے اندر کوئی وشیشتا ہے, بابا کہتا ہے براہمنوں میں ایک وشیشتا ضرور ہوتی ہے, اس وشیشتا کے نیچے آپ کی کئی کمیاں چھپ سکتی ہیں. اس وشیشتا کے نیچے آپ کی کئی کمیاں چھپ سکتی ہیں. کیا یہ میوزک بجائے, کیا ہوا ہے, اوپر سے. اچھا واہ, کہتے ہیں کہ جب دیوتا لوگ بیٹھتے ہیں اوپر سے پھول برسائے جاتے ہیں, یہ تو سنگیت کے ساتھ برسا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیے کہ کسی کی ویکتی کے اندر ایک وشیشتا ہوگی تو اس کی 10 کمیاں چھپ جاتی ہیں. دنیا میں بھی پیسے والے ہوتے ہیں, کئی الٹے کام کر دیتے ہیں اس کے چھپ جاتے ہیں, کہتے بھی پیسے والا ہے چھوڑ دو. کوئی بہت پہلوان ہوتا ہے اس سے بھی لوگ ڈرتے مارے اس کی کئی غلطیاں چھوڑ دیتے کہ یہ کریں گے تو مار کھائیں گے بھے سے. اسی پرکار سے براہمنوں میں بھی کسی میں کوئی وشیشتا ہے, اس کی 2-4 کمیاں خود اگر دھیان نہ رکھے تو چھپ جائیں گی اور چھوڑ دیں گے اس کو. لیکن جب ہم اپنے اچھے کام کرم کا پھل چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا میں نے یہ کیا اس کا مجھے پھل ملنا چاہیے, اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے कुछ वेस्ट किया या अच्छा नहीं किया उसका नुकसान भी तो हमें भुगतना के लिए तैयार रहना चाहिए ना। हम ये चाहते हैं अच्छे का तो मिल जाए और जो बाकी है ना उसको छोड़ दिया जाए। तो कर्म गति ये तो कहती नहीं। कर्म गति कहती है अगर एक सेकंड में आप पदम कमा सकते हैं तो एक सेकंड मिस करने में गंवा कितना सकते हैं। तम कमाई तो गिन लें कि सुबह से शाम तक हमने 100 पदम कमाए, बहुत अच्छा किया, अच्छा 100 सेकंड यूज किए और बाकी गंवाए कितने। तो अगर रोज हम गंवाते जाएंगे तो उसका कारण यही होता है कि हम निमित्त ना मान के फिर उसी विनाशी चीज को जिसको मान शान कहते हैं या अपने विशेषता का नशा कहते हैं। स्कूल में भी ऐसे ही होता है, जो बच्चा जिस सब्जेक्ट में होशियार होता है उसको खूब खुशी से पढ़ेगा और जो सब्जेक्ट में वीक होता है उसको उसकी किताब देंगे ना तो उसको उबासी आनी शुरू हो जाएगी, है थक जाएगा, फिर कर लूंगा, आलस आएगा। इसी प्रकार से यहां भी ऐसे ही है। तो जबकि हमने निमित्त रहेंगे तो ये नहीं रहेंगे मेरी विशेषता, फिर क्या होगा, हे बाबा आपका शुक्रिया, आपने गीत भी बने हुए हैं, आपने मुझे क्या से क्या करके दिखा दिया, हम तो ये चाहते थे आपने ये कर दिया। कहते हैं ना गीत गाता है लेकिन ये गीत रिकॉर्ड तक नहीं है, ये आपके अंदर से बोलना चाहिए कि हे बाबा हमारी मामूली सी विशेषता को आपने इतने बड़े कार्य में लगा दिया और उस निमित्त है। अगर जब तक आप निमित्त रहेंगे आपकी विशेषता बढ़ती जाएगी, उसका कार्य बढ़ता जाएगा। जिस वक्त आपने ये सोचा वाह मेरी विशेषता, तो वही स्टॉप हो जाएगा, चढ़ती कला खत्म। वैसे तो मशहूर है कि शिव जो वरदान देता वापस नहीं लेता, वो कहते हैं हाँ चढ़ती कला खत्म हो गई, मेरे में नशा भी आ गया फिर भी मेरी विशेषता तो कायम है। वो इसलिए कि शिव जो वरदान देते वापस नहीं लेते, एक तो उसकी वृद्धि खत्म हो जाती है, दूसरे वो वरदान धीरे धीरे और कमियों के कारण से छिप जाता है। जैसे किसी चीज को ग्रहण लग जाए, किसी कपड़े को दाग लग जाए, किसी के गुण के अंदर मिक्सचर हो जाए, दूध के अंदर हल्दी मिल जाए या कोई सब्जी मिल जाए, फिर वो गड़बड़ होती है, फिर खुशी बिल्कुल गायब। ना तो उसको कोई दूध कहता है ना उसको कोई सब्जी कहता है, इसको कहते त्रिशंकु है ना, ना घर के रहे ना घाट के रहे, ना माया मिली ना राम मिला, फिर उनकी विचित्र स्थिति हो जाती है। हैं तो बीके, कहते हम तो बीके हैं, लेकिन और सब साधन ऊपर से हंसते भी रहते हैं खुश भी रहते हैं। बाबा ने कहा हुआ है एक खोखली हंसी होती है और वो ऊपर ऊपर से होती है, दिल उनका रोता है ऊपर से वो खुश होते हैं। क्यों, ये उनको क्या करें बेचारे, किसी को जाहिर भी नहीं कर सकते कि हम उदास हैं, अंदर से ऐसा है। वो मान शान इधर उधर की, जैसे कोई लंगड़ा आदमी नकली टांग लगा के चलता है, बिना बाजू वाला लकड़ी का बाजू लगाता है, ऐसे साधन सुधन इकट्ठे करके जैसे रावण इतना लंबा 10 रस्सियों से बांधा जाता है, उसके आधार से वो खड़े रहते हैं। इस वास्ते बाबा कहता है ये कोई ब्राह्मण जीवन थोड़ी है। इसलिए हमें निमित्त में क्या होगा कि ना तो आपको कोई चीज असफल हो गई उसका कोई शौक आएगा, ना कोई सफल हो गई उसमें आपकी बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ेंगे, तो बीच का रास्ता रहेगा। निमित्त मैंने नेकी कर कहां डाल, कहते ना दरिया में डाल, यहां दरिया नहीं चलो लेक में डाल दो, लेकिन आप अपनी जेब में नेकी रख लो या सोचो स्टेट बैंक में अकाउंट खोल लेते हैं नेकी का, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, वो लिमिट में आ जाता है। इस वास्ते हमें विनाशी और अविनाशी, अगर हम दो शब्द याद रखते हैं तो विनाशी में विनाशी खुशी है सही, ऐसे नहीं है, और अविनाशी में अविनाशी खुशी है। आपकी मर्जी है कि आप विनाशी मैंने ये मेरी ड्रेस अच्छी होनी चाहिए, सबसे अच्छी होनी चाहिए, ये ड्रेस शरीर ही विनाशी है तो ड्रेस क्या होगी, अच्छा खुशी होगी कि वाह मेरी ड्रेस सबसे सफेद है, लेकिन विनाशी ड्रेस देख के ये भूल जाएंगे मेरी आत्मा को भी सफेद बनना चाहिए। इस वास्ते हमेशा हम जितना टाइम जितनी एनर्जी इसमें लगाएंगे तो आपके जो अंदर के गोल्डन संस्कार हैं वो प्रकट होंगे। अब हम कहते हैं रॉयल्टी होनी चाहिए है, सम्मान देने की शक्ति होनी चाहिए, हम चाहते सम्मान लेने की शक्ति हमने हो, हमारी सब इज्जत करें। अच्छा ये बाबा कहता है तो एक ही बात इज्जत हो, लेकिन पहला स्टेप आपको लेना है, आप इज्जत करिए, आप ओम शांति बोलिए दूसरा जवाब देगा, आप नमस्कार करिए दूसरा नमस्कार करेगा, आप खड़े हो जाएं ये मुझे नमस्कार करे, तो फिर क्या होगा? तो रॉयल्टी तो नहीं रही ना, रॉयल व्यक्ति मांगता नहीं है, तो रॉयल की निशानी है देने वाला।
ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ, धर्मराज के आगे तुम निर्भय होकर।